जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आई?
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख साहब, आपकी आवाज आ रही है। जी सर,
जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये इस्तलाहात कुछ हमने सबसे पहले समझनी है। 8 ज़िलहज को यौम तरविया कहा जाता है। यौम तरविया, तरविया कहते हैं असल में सैराब करना। तो लोग उस वक्त हज के लिए रवाना होने से पहले अपने ऊंटों को, जानवरों को खूब पानी से सैराब कर लेते और खुद भी स्टोर कर लेते, क्योंकि उन दिनों में पानी का बड़ा मसला था। तो इसलिए इस दिन का नाम यौम तरविया पड़ गया। अगला दिन 9 तारीख का, उसको योम अरफा कहा जाता है। 10 तारीख को योम उन नहर, कुर्बानी का दिन। 11 तारीख को योम उल कर। 12 तारीख को हज की इस्तेलाह में योम उन नफरिल अव्वल, यानी रवानगी का, वापस चले जाने का पहला दिन। क्योंकि जो लोग 12 तारीख की कंकरियां मार के जाना चाहें तो उनको रुख्सत है, वो जा सकते हैं ग़ुरूब से पहले पहले। और 13 तारीख को यौम उन नफ़र सानी कहा जाता है। ऐसे ही 11, 12 और 13, इनको अय्याम तशरीक और अय्याम मीना के नाम से भी याद किया जाता है। इन अय्याम में होने वाले जो आमाल हैं, उनमें से बास का जो इस्तलाही नाम है, मसलन वकूफ आरफा, एक इस्तलाह है वकूफ आरफा। इसका मतलब है कि 9 तारीख को जवाल से लेकर गुरूब आफताब तक अरफात के मैदान में रुकना और दुआएं करना। मबीत मुजदलफा, अगली रात 9 और 10 की दरमियानी रात मुजदलफा में गुजारनी होती है, तो इसलिए इसका नाम मबीत मुजदलफा है। जमरात, जिन्हें उर्फ में लोग शयातीन कहते हैं, जमरात, इनके नाम हैं जमरा उला, जमरा वुस्ता, जमरा कुबरा भी कहते हैं, जमरा आकाबा भी तीसरे को। रमी, रमयुल जमरात, इन जमरात को कंकरियां मारना। हल्क या कसर, बाल मुंडवाना या कटवाना। तवाफ इफाजा, इसका दूसरा नाम तवाफ जियारत भी है, जो हज का तवाफ कहलाता है, और इसके बाद सफा मरवा की सई भी है। जगहों के नाम, अय्याम हज में जहां हमने रहना है या जहां से गुजरना है। मीना, ये एक मैदान है। आरफात, इसको आरफा भी कहा जाता है, जो अरकान हज में से सबसे बड़ा रुकन है। मुजदलफा, ये मीना से मुत्तसिल मैदान है जहां एक रात बसर करनी है। वादी मुहसर, ये मुजदलफा और मीना के दरमियान एक छोटी सी वादी है जहां से तेजी से गुजर जाना होता है, जहां अल्लाह ताला ने अब्रह नामी बादशाह को अबाबील के जरिए हलाक फरमाया था। तो इन इस्तलाहात को समझने के बाद अब हम अपने इस अमली हज की तरफ आते हैं। 9 तारीख, 8 तारीख को जहां कहीं भी आप हैं, वहीं से हज का एहराम बांधना है। नबी अली सलात व सलाम ने हिज्जतुल वदा के मौके पर जब सहाबा कराम को उम्रा करके एहराम खोल देने का हुक्म दिया, फिर 8 ज़िलहज यानी यौम तरविया को जहां थे वहीं से एहराम बांध कर मीना की तरफ रवानगी का हुक्म दिया, हुदूद हरम से बाहर जाने का हुक्म नहीं दिया। वो अमल उम्रे का है कि उम्रे के एहराम के लिए हुदूद हरम से बाहर जाना है। तो 8 तारीख की सुबह को ये मसनून तरीका है, लेकिन हालात के तहत बढ़ती हुई तादाद के पेशे नज़र वहाँ की हुकूमत ने जो एहतमाम इस वक्त कर रखा है वो रात को 11-12 बजे के बाद से ही मीना की तरफ लोगों को ले जाना शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल वक्त से पहले पहुंच जाना कोई नाजायज बात नहीं, ना ही हज में कोई नक्स आएगा। असल जो मसनून तरीका है, अगर उसमें सहूलत मयसर हो, तो नबी अली सलात व सलाम ने जो हज अदा फरमाया वो आप तुलुए फजर के बाद रवाना हुए मीना की तरफ, जोहर से पहले पहले मीना में पहुंच जाएं तो ये अफजल टाइम है, लेकिन वाजिबात हज में से नहीं है। नबी अली सलात व सलाम ने इस दिन सारी नमाजें मीना में पढ़ी, जोहर, असर, मगरिब, ईशा और अगले दिन की सुबह भी। और मीना की नमाजें आप अलैहि सलातो व सलाम ने जो 4 रकात वाली नमाज थी, 2 रकातें यानी कसर नमाज अदा की, लेकिन हर नमाज को उसके वक्त पर अदा किया। यहां अपने अपने खैमे में रहना है। मीना के मैदान की जो मारूफ तरीन मस्जिद है उसका नाम है मस्जिदुल खैफ। मुजदलफा के अंदर जो मस्जिद है उस मस्जिद का नाम है मस्जिद मशारुल हराम। अरफात की मस्जिद का नाम है मस्जिद नमीरा। इन सारी मसाजिद में से कदीम तरीन मस्जिद जो है वो ये मीना की मस्जिद है, मस्जिद खैफ, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि यहाँ मुझसे पहले भी 70 अंबिया नमाज पढ़ चुके हैं, अगर वक्त मिले तो वहां भी चले जाए, एक दो नमाजें वहां अदा हो जाए, नहीं तो अपने अपने खैमों में रहते हुए कोशिश करें बाजमात नमाजें और वक्त पर और कसर 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात की शक्ल में अदा करें। नबी अली सलात व सलाम ने अगले दिन की सुबह भी इसी मैदान में अदा की। ये यौम अरफा शुरू हो चुका है अब 9 तारीख। इस दरमियान में और कोई अमल नहीं, बस वहां रहना है, तलबिया है, तकबीरात हैं, जिक्र व अस्कार हैं, कुरान मजीद की तिलावत है। यौम अरफा की सुबह को मैदान अरफात की तरफ जाना है। नबी अली सलात व सलाम ने जो हज अदा फरमाया आप जल्दी रवाना हुए और मैदान अरफात से बाहर एक वादी है, वादी नमिरा, वहां आपने पड़ाव डाला। वादी नमिरा और वादी अरफात के दरमियान एक छोटी सी वादी है जो कि वादी नमेरा का ही एक हिस्सा समझ लें, उसका नाम है वादी अरना। वहां खड़े होकर नबी अली सलात व सलाम ने जवाल के बाद हज का खुतबा इरशाद फरमाया, जिसे खुतबा हिज्जतुल वदा के नाम से हम याद करते हैं। फिर आपने जोहर की नमाज 2 रकात बाजमात पढ़ाई और जोहर के वक्त में ही जमा तकदीम की शक्ल में असर की नमाज की 2 रकात भी आपने पढ़ा दी। तो सुन्नत यही है कि योम अरफा को जोहर और असर कसरन और मिला के पढ़ी जाए। यह नबी अली सलाम और सहाबे कराम का तरीका रहा। इसके बाद नबी अली सलाम मैदान अरफात में दाखिल हुए। आज मस्जिद नमेरा जहां तामीर है उसका अगला हिस्सा उसी वादी अरना में है, उसी जगह पर जहां नबी अली सलातो सलाम ने खुतबा हिज्जतुल वदा इरशाद फरमाया। मस्जिद की तौसी होते होते पिछला सारा हिस्सा मैदान अरफात में दाखिल हो चुका है। तो जिन लोगों को मस्जिद नमेरा में दाखिले का मौका मिल जाता है वो इस बात को याद रखें कि खुतबा हज और नमाजें अदा करने के बाद अगर उनको आगे का हिस्सा मिला है तो उन्हें मस्जिद के पिछले हिस्से में या मस्जिद से बाहर वादिये मैदान अरफात में अपने वकूफ को लाजिम करना होगा, क्योंकि अगला हिस्सा जो है वो मैदान अरफात से बाहर है। ये वकूफ अरफा यह हज का अहम तरीन रुकन है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है अल हज अरफा, हज तो है ही अरफात का नाम। आप अलैहि सलात व सलाम का फरमान है कि इस दिन से बेहतर और कोई ऐसा दिन नहीं कि जिस दिन में अल्लाह ताला लोगों की गर्दनों को जहन्नम से इतनी तादाद में आजाद करता हो जितनी तादाद में योम अरफा को अल्लाह लोगों की गर्दनों को जहन्नम से आजाद करने का ऐलान फरमाता है। अल्लाह ताला हमें भी माफ फरमा दे। आप अलैहि सलात व सलाम ने फरमाया इस दिन का सबसे बेहतरीन जिक्र जो मैंने और मुझसे कबल अंबिया ने सबसे ज्यादा जिक्र किया वो है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। और एक रिवायत में युही व युमीत के अल्फाज भी मौजूद हैं। ये जिक्र बकसरत पढ़िए। देखिए ना, जोहर के वक्त में नबी अली सलात व सलाम ने जोहर और असर को मिला के पढ़ा और इस मैदान अरफात की एक मारूफ पहाड़ी है जिसको जबले रहमत के नाम से याद किया जाता है, आप उसकी एक साइड में जाके रुके। सवारी पर बैठे बैठे किबला रुख होकर आप अली सलाम ने अल्लाह के हुजूर हाथ उठाए और दुआ मांगना शुरू की हत्ता के सूरज की टिकिया गायब हो गए। इतनी लंबी दुआ। इस दौरान सहाबा नकल फरमाते हैं नबी अली सलात व सलाम की सवारी की लगाम आपके हाथ मुबारक में थी। एक वक्त ऐसा आया कि वो लगाम हाथ से गिरी तो उस वक्त भी नबी अली सलाम का एक हाथ ऊपर उठा रहा। एक हाथ के जरिए नबी अलैहिस्सलाम ने लगाम को फिर पकड़ लिया। तो ये दिन अहम तरीन दिन है, दुआओं का दिन है। आप यहां रुके, आपने फरमाया मैं यहां ठहरा हूं, लेकिन आराफा पूरा का पूरा मौकिफ है और रुकने की जगह है। पूरे मैदान में जहां कहीं भी आप मौजूद हैं, आपका खैमा है, वहां आप दुआ करें। हुक्म एक ही है, अगर जबले रहमत दूर है वहां तो आने जाने में वक्त को जाया करने की कोशिश ना करें। जो अजर आपके खैमे में, आपके खैमे से बाहर, वही अजर जबले रहमत के पास खड़े होकर दुआ मांगने का है। खूब दुआ मांगिए अपने लिए, कौम व मिल्लत के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। दुनिया आखरत की सारी भलाइयां मांगिए। अल्लाह के हुजूर रो रो कर, गिड़ गिड़ा कर इस दिन आप अल्लाह के बहुत मुकर्रब तरीन बंदे बन चुके हैं। लिहाजा मैदान अरफात में इन चीजों से होशियार रहना है कि बाज लोग मूवियों के चक्कर में, तस्वीर बनाने के चक्कर में अपने वक्त को ज़ाया करते हैं। अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना, दुआएं मांगनी है। हज आपका सख्त तरीन गर्मी के दिनों में आ रहा है, पानी की सहूलतें हर जगह मयसर हैं, ताहम फिर भी पानी की एक आध छोटी बोतल अपने पास रखते हुए कहीं भी दुआओं में आप मसरूफ हैं, दुआएं करें और ज़रूरत के मुताबिक एक एक घूंट करके पानी पिए। खुराक की तरफ ऐसी तवज्जो दें कि ऐसी खुराक कम से कम और ऐसी खुराक इस्तेमाल हो कि आपको वॉशरूमों में जाने की हाजत कम से कम रहे, क्योंकि मैदान अरफात और मुजदलफा में चूंकि एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, गो बड़ी तादाद में ये सहूलत मयसर है, ताहम जितने लोग हैं उस एतबार से ये नाकाफी हो जाता है। तो सौकात तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना है। ये चंद दिन हैं, इन दिनों में आपने अपने औकात अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना और दुआएं मांगने में बसर करने हैं। ग़ुरूब आफ्ताब तक वहां रहना वाजिब है। हज के अरकान नियत करके एहराम बांधना, एहराम बांध के नियत करना, वकूफ अरफा, तवाफ इफाजा और सफा मरवा की सई, ये हज के अरकान हैं। इनमें से कोई एक रुकन रह जाए हज बादल हो जाता है। लेकिन मीकात से एहराम बांधना, अरफात में गुरूब आफ्ताब तक रहना, मुजदलफा की रात मुजदलफा में गुजारना, जमरात की रमी, हल्क या कसर और तमत्तो और हज किरान वालों के लिए कुर्बानी, तवाफ अलविदा, मबीते मीना, अय्याम मीना की रातें मीना में गुजारना, कम से कम 2 रातें 11 और 12 की, ये वाजिबात हज हैं। इनमें से कोई वाजिब रह जाए तो दम लाजिम आ जाता है। तो लिहाजा गुरूब आफ्ताब तक वहां ठहरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। गुरूब आफ्ताब के बाद मैदान अरफात को नबी अली सलात व सलाम ने छोड़ा और फिर वापसी मुजदलफा की तरफ, क्योंकि मुजदलफा मीना के करीब है, अरफात दूर है। अब मीना से निकले, मुजदलफा को क्रॉस करते हुए अरफात पहुंच चुके थे। आज ये जो रात आ रही है, ये रात और मगरिब और इशा की दोनों नमाजें आपकी मुजदलफा में होंगी। अगरचे गुरूब आफ्ताब नबी अली सलाम को भी अरफात में हो गया, सहाबा ने अर्ज भी की कि अल्लाह के नबी नमाज पढ़ लें, आपने फरमाया नहीं नमाज आगे। रास्ते में कहा गया कि नमाज पढ़ लें, आपने फरमाया नहीं नमाज आगे। मुजदलफा के मैदान में पहुंचकर आपने मगरिब और इशा को कसरन और जमा करके अदा फरमाया, ये नबी अली सलाम की सुन्नत है। लिहाजा मुजदलफा में मगरिब और इशा को अदा करना है, और इशा जो 4 रकात फराइज हैं वो 2 अदा करने हैं। इसके बाद नबी अली सलात व सलाम ने इस रात आराम फरमाया है, क्योंकि पिछला दिन भी थोड़ा सख्त दिन था, मुश्किल था, सारा दिन दुआओं के लिए था, वक्त था। अगला दिन जो यौम नहर है, उस दिन हज के मनासिक सबसे ज्यादा अदा करने हैं, तो उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। कुछ रिवायात पेश की जाती हैं इस रात के बारे में, इस रात की इबादत के बारे में, कि इस रात की इबादत लैलतुल कद्र की इबादत से अफजल है। ये सब मौजूआत रिवायतें हैं, कोई सही रिवायत नहीं। नबी अली सलात व सलाम ने इस रात नमाज तहज्जुद भी अदा नहीं फरमाई, आप आराम फरमा गए, सहाबा भी आपके साथ आराम फरमा गए। आपने जमा करके मगरिब व इशा को अदा किया। साहबा फरमाते हैं ना पहले ना बाद में आपने कोई नवाफिल अदा नहीं की, तो उस रात आराम कीजिए वहां, जहां भी जगह मयस्सर हो, वहां खैमे लगे हुए नहीं होते, खुले मैदान आसमान तले, वहां ये रात गुजार करके अल्लाह ताला की किबरियाई बड़ाई बयान करते रहना है, और अपने इज्ज़ और इनकिसारी का इजहार और इकरार क्या है, कोई खास अमल तो नहीं है, रब अपनी किबरियाई मनवाता है कि आज वहां चले जाओ, आज यहां आ जाओ, सो जाओ, यहां सो जाना इबादत है, खुले आसमान तले सो जाओ, खुले आसमान तले अमीर और गरीब एक ही लिबास में सब वहां लेटे हुए हैं, किसी के पास कोई आर्जी बिस्तर है, कोई पत्थरों पे लेटा हुआ है, कोई एहराम की चादर बिछा के लेटा हुआ है, ये निशानियां हैं अल्लाह ताला की कुदरत की, कि अल्लाह अपनी बड़ाई किस तरह बनवाता है। नबी अली सलात व सलाम ने इस रात कमजोरों को, बूढ़ों को और बच्चों को आधी रात के बाद मीना की तरफ जाने की इजाजत दे दी थी, तो ऐसा शरी उजर कोई मौजूद है, तो वो आधी रात गुजारने के बाद मीना की तरफ रवाना हो सकते हैं। नबी अली सलात व सलाम ने इस रात में आराम फरमाकर सुबह बहुत जल्दी, बहुत जल्दी से मुराद तुलुए फजर से पहले नहीं, तुलुए फजर होते ही अजान दिलवाई, और दो सुन्नतों के बाद फौरन आप अलैहि सलातो सलाम ने सहाबा को नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद आप किबला रुख होके दुआ में मसरूफ हो गए, हाथ उठाकर आपने एक लंबी चौड़ी दुआ मांगी। कुरान भी कहता है फ़ाइज़ा अफ़स्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़कुरुल्लाह इंदल मशारिल हराम, जब अरफात से वापस आ जाओ तो मशारुल हराम के पास खूब दुआएं मांगो, अल्लाह का जिक्र करो। मशारुल हराम मैदान मुजदलफा की एक पहाड़ी का नाम है, वहां जो मस्जिद उस पहाड़ी के करीब बनाई गई उसका नाम भी मस्जिद मशारुल हराम है। कहीं भी खड़े होकर आपको जहां जगह मयस्सर है नमाज के बाद एक दुआ मांगिए, लंबी दुआ मांगिए, किबला रुख हो जाइए, हाथ उठा के खड़े होकर मैदान अरफात के वकूफ के लफ्ज से बाज लोग ये लेते हैं कि शायद अरफात में खड़े होके दुआ मांगनी है, वहां ये लाजमी नहीं, खड़े होके, बैठ कर, लेटे, जिस तरह भी सहूलत में असर हो आप दुआएं मांगे। बाज लोगों को देखा है कि वो मुजदलफा पहुंचते ही सबसे पहला जो काम करते हैं वो कंकरियां चुनते हैं, वहां कंकरियों को धोते हैं, सुखाते हैं और अपने पास महफूज कर लेते हैं। उनका ख्याल है कि शायद कंकरियां जो जमरात की रमी करनी है, मारनी है, वो मुजदलफा ही से उठानी है, ये गलत फहमी है। हाँ, अपनी सहूलत के पेशे नजर के मीना तकरीबन पक्का हो चुका है, वहां कंकरियां मुयस्सर नहीं होती, यहां बआसानी मिल जाती हैं, ले ली जाए तो कोई हर्ज नहीं, वो भले एक दिन की ले लें या सारे दिनों की जमा कर लें, फिर उनको धोना ये एक तकल्लुफ है जिसकी कोई शरी हैसियत नहीं। यौमुन नहर में आप दाखिल हो चुके, 10 तारीख की सुबह की आप नमाज पढ़ चुके हैं मैदान मुजदलफा में। इस दिन आपने 5 काम करने हैं। पहला काम क्या है, अगर ये तरतीब मलहूज रख सकें तो ये सबसे अफजल है, अगर तकदीमो ताखीर हो जाए तो वो भी जायज है। तरतीब शरीयत ने क्या रखी है, इस दिन 7 कंकरियां लेते हुए मुजदलफा से आप निकले, मीना में दाखिल हूं, तलबिया पढ़ें, तकबीरात ईद पढ़ें, तस्बीहातो तहलीलात का विर्द करते जाएं। मस्जिद खैफ को अबूर करने के बाद पहले जमरा उला आएगा, 10 तारीख को उसको छोड़ देना है, फिर जमरा वुस्ता है उसे छोड़ देना है, आखिर में जमरा अकबा जिसे जमरा कुबरा भी कहा जाता है, उर्फ में लोग उसी को बड़ा शैतान कहते हैं। जमरा अकबा की रमी करनी है, और रमी पत्थर मारने का नाम है। सहाबा कराम ने नबी अली सलाम की अदाओं को किस तरह नोट फरमाया है, फरमाते हैं नबी अली सलात व सलाम जब तशरीफ लाए तो आप जमरा अकबा की उल्टी साइड की तरफ आए, बाएं साइड की तरफ आए, और जब जमरा की तरफ आपने मुंह फरमाया तो आपकी दाई जानिब मीना की तरफ थी और फिर बाई जानिब मक्का की तरफ थी, बैतुल्ला की तरफ, क्योंकि बैतुल्ला आ गया। मीना से सीधा बैतुल्ला की तरफ जाते हुए जमरा अकबा है, जब बाई जानिब से होकर फिर मुड़ेंगे जमरे की तरफ, वो एक दीवार है बड़ी, उसकी तरफ जब मुंह करेंगे तो अज खुद आपकी सीधी जानिब दाई जानिब मीना की तरफ जहां से आप आए, और बाई जानिब जहां जा रहे हैं बैतुल्ला की तरफ हो जाएगी, और फिर एक-एक कंकरी हाथ में लेकर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कह के रमी करनी है। याद रहे कि जमरा अकबा के शुरू में ही लोग जमा हो जाते हैं, वहां इज्तिहाम होता है, वहां एक दूसरे को कंकरियां लगती हैं, जमरे तक पहुंच नहीं सकती, रश में लोग दब जाते हैं बस औकात। एक ये लंबी दीवार है, बड़े इत्मीनान के साथ किसी घबराहट के बगैर जब जमरा की दीवार शुरू हो, अब थोड़ा दूर हो जाए, दूर से आगे बढ़ते जाए, जमरा की आखिरी जमरा की तरफ, तो आपको जमरा की दीवार के पास बिल्कुल खाली जगह मिलेगी कि आप उससे आगे जो छोटी बाउंड्री है उस पर हाथ रखकर बआसानी, कोई धक्कम पेली नहीं होगी, गर्मी कर सकेंगे। सब लोग शुरू में ही जमा होकर दूर दराज से पत्थर फेंकने की कोशिश करते हैं, जो कुछ जमरा तक पहुंचते हैं, कुछ पहुंच ही नहीं पाते, जिनका शुमार ही नहीं होता। लिहाजा कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घबराहट नहीं है, बल्कि थोड़ा दूर फासले से होकर लोगों के रश से निकलते हुए जमरा की दीवार के आखिरी कोने में जाकर आप अब उस दीवार के करीब आने की कोशिश कीजिए। नंबर 2, कंकरी एक एक करके मारनी है। अगर आपने 7ों कंकरियों को एक साथ मारा तो ये एक कंकरी शुमार होगी, एक एक कंकरी, और अल्लाह अकबर कहकर 7 कंकरियां मारनी है। एहतियातन आप एक दो ज्यादा लेके आए कि कोई मारने से पहले हाथ से गिर जाए तो आपके पास इजाफी एक आध कंकरी हो, बफर्ज़ महाल ऐसा हो जाए। नहीं होता तो इजाफी कंकरियां फिर मारनी नहीं है, क्योंकि ये खिलाफ सुन्नत हो जाएगा, वो 7 ही कंकरियां मारनी है। नबी अली सलात व सलाम की सुन्नत मुबारका है कि जब आपने जमरा अकबा की रमी फरमाई तो आपने तलबिया खत्म फरमा दिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। 8 तारीख को एहराम बांधा था, और एहराम बांध कर ये जो मुतमत्ते थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हज्जे किरान में थे, जो किरान वाले हैं वो तो पहले ही तलबिया पुकार रहे हैं और एहराम में हैं, जो हज्जे तमत्तो कर रहे होंगे उन्होंने 8 तारीख को एहराम बांधा होगा, अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक कहकर। तो तलबिया 8 से शुरू हो गया, सुबह से 8 को जारी रहा, 9 को जारी रहा, 10 की सुबह उस वक्त तक जब तक आप जमरा अकाबा पर नहीं पहुंचे, उस वक्त तक तलबिया आप पुकारते रहे। जमरा अकाबा की रमी के बाद तलबिया मुनक़ते। अब तकबीरात ईद हैं, देगर अस्कार हैं, वो आप करें, लेकिन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक यानी ये तलबिया मुनक़ते हो जाएगा। इसके बाद जमरा अकबा की रमी के बाद दुआ नहीं है। इसका असल वक्त जो है तुलुए शम्स, तुलुए आफ्ताब के बाद, जोहर से पहले पहले है। ताखीर हो जाए तो फिर भी रमी की जा सकती है, लेकिन वो लोग जो मरीज हैं, बीमार हैं, कमजोर हैं, जिन्हें रात को ही मुजदलफा से पलटने की शरीयत इजाजत देती है, वो तुलुए फजर के बाद और तुलुए आफ्ताब से पहले पहले भी मार सकते हैं, उनके लिए यह रुख्सत है। ये एक काम आज का रमी का मुकम्मल हुआ। इसके बाद दूसरा काम जो है वो कुर्बानी करना है। हज किरान करने वाले और हज तमत्तो करने वालों पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी चूंकि आज ये सहूलत मैसर नहीं कि हम खुद करें, उसमें नियाबत होती है सरकारी सतह पर या अलहदा कुछ अफराद की जिम्मेवारियां दी जा चुकी होती हैं, तो उन्होंने एक टाइम दिया होता है। इनफरादी तौर पर आपने दिया है तो वो आपको ये भी कह सकते हैं कि रमी के बाद आप हमें मैसेज कर देना, हम आपकी कुर्बानियां कराएंगे, आप इसके बाद हलक करवा देना। सरकारी सतह पर है, उन्होंने भी टाइम दिया है आपको, हो सकता है वही दिन दिया हो, अगला दिन दिया हो, लिहाजा इस चीज को सामने रखते हुए अगर तकदीमो ताखीर हो जाए इन अरकान की, इन फराइज व वाजिबात की अदायगी की, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। हिज्जतुल वदा के मौके पर सहाबा फरमाते हैं कि बहुत सारे सहाबा आए, किसी ने कहा मैं अल्लाह के नबी कुर्बानी कर पहले कर बैठा जमरा, फरमाया अभी कर लो कोई हर्ज नहीं। किसी ने कहा मैं तवाफ इफाजा पहले कर बैठा, फरमाया कोई हर्ज नहीं। किसी ने कोई बात कही, फरमाया कोई हर्ज नहीं, अब कर लो, ये चीज रह गई। तो तकदीमो ताखीर बगैर किसी फिदिये और दम के जायज है। तरतीब अगर आप रख सकते हैं तो औला है, अफजल है, कुर्बानी है। कुर्बानी के बाद हल्क या कसर, मर्दों के लिए, खवातीन के लिए सिर्फ कसर, थोड़े से बाल कटवाना। इसके बाद एहराम खत्म हो जाएगा। इसको अत्तहल्लुल अव्वल कहते हैं, अत्तहल्लुल अव्वल, ये हलाल हो गए। वो सारी चीजें जो एहराम की वजह से हमारे ऊपर हराम हुई थी वो अब जायज हो गई, सिवाय एक काम के, इल्लन निकाह, इस दिवाजी ताल्लुकात के। इसलिए इसको तहल्लुले अव्वल कहा है, और वो पाबंदी तवाफे इफाजा तक बरकरार रहती है। अब एहराम उतर चुका, एहराम खत्म हो गया, मक्कातुल मुकर्रमा बैतुल्ला हाजरी देनी है। आम लिबास में अगर किसी को कपड़े तब्दील करने की सहूलत मयस्सर ना हो सकी, एहराम की चादरें ओढ़ी हुई हैं या खवातीन ने वही लिबास पहना हुआ है, तो कोई हर्ज नहीं है। अब ये बतौर लिबास है, अब ये एहराम नहीं है कि एहराम की वो पाबंदियां हों जो एहराम की हालत में होती हैं। तो बैतुल्ला का जाके तवाफ करना है आम लिबास में, इसमें मर्दों के लिए ना इस्तेबा है और ना ही रमल। जो तवाफ कुदूम में पहला तवाफ जो उमरे में किया था जाते हुए, कि कंधा नंगा किया था, जिसको हमने इस्तेबा का अमल बताया था, दुल की चाल चले थे जिसको हमने रमल का नाम दिया था, वो इस तवाफ में नहीं है। ये आम जिस तरह एक नफली तवाफ किया जाता है, ये उसी तरह का तवाफ है, लेकिन हज का रुकन है। ये ना होने की शक्ल में हज बातिल हो जाता है, और इसके बाद सफा मरवा की सही भी है। ये पांच चीजें हैं इस दिन। तवाफ इफाजा, जिनमें चार चीजें गिनी हैं, तो तवाफ इफाजा गिना कि वो तवाफ जिसके साथ सफा मरवा की सही है। अलबत्ता हज किरान और हज इफराद वाले अगर सही पहले कर चुके हैं तो आज के दिन उनके लिए सिर्फ तवाफ काफी होगा, सही नहीं होगी उन पर। लेकिन मुतमत्तईन जिन्होंने हज तमत्तो किया है, उन्हें तवाफ तवाफ इफाजा तवाफ जियारत के साथ साथ सफा मरवा की सही करना भी लाजिम होगा, जो कि हज के अरकान में से एक रुकन है। बिहम्दिल्लाह ताला यौमुन नहर के जो भी उमूर थे वो सफा मरवा की सही मुकम्मल होने पे मुकम्मल हो गए। यहां रुककर मैं बिलखुसूस अपनी बच्चियों को यह नसीहत करना चाहूंगा कि अगरचे तवाफ इफाजा को मुअख्खर करने की शरीयत में रुख्सत है, आप 11, 12, 13 इसके बाद तक भी मुअख्खर कर सकते हैं, अफजल पहला दिन है, लेकिन आप लोगों को सहूलत मयसर होते ही पहली फुर्सत तवाफ इफाजा कर लें, क्योंकि कहीं शरई आरजा ना आ जाए कि जिसकी बुनियाद पर आप तवाफ इफाजा ना कर सकें, क्योंकि वो शरई आरजा जो खवातीन के साथ मखसूस है, मनासिक हज के जितने भी अरकान हैं अहकाम हैं सब अदा किए जा सकते हैं, इल्लत तवाफ, तवाफ नहीं किया जा सकता। तवाफ अलविदा अगर रह चुका हो तो तवाफ अलविदा इस मजबूरी की वजह से तवाफ किए बगैर खवातीन को जाने की इस्लाम में रुख्सत है, लेकिन तवाफ इफाजा चूंकि हज का रुकन है लिहाजा इसको छोड़कर जाने की रुख्सत नहीं, तो इसे पहली फुर्सत में ही अदा करें। शॉर्ट पैकेज वाले ये कोशिश करें कि वो मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल रखें ताकि इन अय्याम में इस परेशानी का सामना ना करना पड़े। उमूमी तौर पर हमारी नसीहत ये होती है कि फैमिलीज के साथ जाने वाले हजरात ऐसा पैकेज लें कि हज के बाद भी कम से कम उन्हें एक हफ्ता मक्का मिल सके, ताकि ये परेशानी हो तो फिर पाक साफ होकर तवाफ इफाजा किया जा सके। लेकिन शॉर्ट पैकेज में चूंकि इतना दिन नहीं होते, तो लिहाजा ये मेडिसिन का सहारा लेते हुए अल्लाह ताला से दुआएं करते हुए कि ये आरजा और ये परेशानी लाहक ना हो। बस हमारी बच्चियां ये सोच लेती हैं कि हमारा तो शेड्यूल ये है ही नहीं, लेकिन वहां की गर्मी, मुसलसल पैदल चलना, इस वजह से शेड्यूल कभी इंतहाई आगे पीछे हो जाता है, मुतासर हो जाता है। हर साल कई एक सवालात आते हैं साथियों की तरफ से जो इंतहाई परेशान कुन होते हैं। लिहाजा ये नसीहत खुसूसी तौर पर नोट फरमा लीजिए। जी हाँ, आज यौम नहर के ये सारे आप अहकामात और मनासिक अदा कर चुके, जो हज के अहम तरीन मनासिक थे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, फ़ाइज़ा कज़ई तुम मनासिककुम फ़ज़कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। यही अगले दिन है कि मुशरिकीन मक्का जब हज किया करते थे तो वो इन दिनों में मीना के मैदान में मेले लगाते थे। मेले का समा होता था, शेरो शायरी के मुकाबले होते, आबाओ अजदाद की तारीफें करते, हसब नसब पर फख्र करते, तकरीरें होती, स्टेज लगते। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम जब हज के मनासिक अदा कर चुको तो मीना में रहते हुए خوب اللہ کا ذکر کرو جس طرح پہلے آباؤ اجداد کا ذکر کرتے تھے، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ تو لہذا آج واپس پلٹ جانا ہے آپ کو، تھوڑا آرام کرنے کے لیے ہوٹل میں آپ کو سہولت میسر ہو وہاں جائیں، نہیں تو واپس اپنے خیمے میں جائیں۔ یہ اگلی 2 راتیں مینا میں گزارنا واجبات حج میں سے ہے۔ یہ 10 کے بعد، 10 اور 11 کی درمیانی رات اور 11 اور 12 کی درمیانی رات، 12 اور 13 کی درمیانی رات وہاں گزاریں تو افضل ہے، نہیں تو قرآن کہتا ہے فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقا۔ اگر کوئی شخص 2 دن میں ہی وہاں رہ کر رمی کر کے آنا چاہے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن کوئی رہنا چاہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی 3 راتیں مینا میں بسر فرمائی تھیں، تو افضل عمل یہی ہے۔ 10 تاریخ کو رات کو آپ مینا میں پہنچ جائیں، یہ مبیت مینا ہے، کوئی علیحدہ سے عمل خاص نہیں ہے سوائے اس کے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، یہ حکم ہے۔ خوب اللہ کا ذکر کریں، تکبیرات عید پڑھیں، تلاوت کریں، دعائیں مانگیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ایام میں تاریخی خطبے ارشاد فرمائے، خطبہ حجت الوداع کے بعد یوم النحر کو بھی آپ نے جمرہ عقبہ کے پاس خطبہ ارشاد فرمایا، پھر ایام تشریق کے وسط میں بھی ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، آج بھی مسجد خیف میں یہ خصوصی دروس کا اہتمام جاری رہتا ہے۔ آپ کے ساتھ بحمدللہ معلمات معلمین موجود ہیں، ان سے ضرور نصیحتیں لیتے رہیں ان دنوں میں، اور ان دنوں سے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اذکار، قرآن مجید کی آیات، سورتیں جتنا یاد کر سکتے ہیں وہ کریں۔ بہرحال یہ خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اور اللہ کے ذکر کے ایام ہیں۔ صبح ہو جائے گی اور کوئی خاص عمل نہیں، وہی نماز ہے۔ ان دنوں میں نمازیں اپنے اپنے وقت پر ادا کرنی ہے، لیکن قصر، اسے حج پیکج سمجھیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر تو مدت سفر لاگو نہیں ہو رہی، ہم قصر کیوں کریں؟ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ والے سال خود تو نماز قصر کی اور اعلان کیا کہ مقیم حضرات اپنی نماز پوری کر لیں، کیونکہ انا قوم سفر، ہم مسافر ہیں، ہم قصر کریں گے۔ لیکن حجت الوداع کے موقع پر منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں آپ نے سب کو، کوئی مقیم تھا یا مسافر، سب کو نماز قصر پڑھائی۔ ابو بکر صدیق کے دور میں، عمر کے دور میں، عثمان رضی اللہ عنہم، ان کے ابتدائی دور میں نماز قصر ہی منا میں ادا ہوتی رہی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخری ایام میں ایک اجتہاد کرتے ہوئے نماز پوری پڑھی، لیکن اسی وقت امت میں اختلاف کھڑا ہو گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیت اللہ کے حضور دعا گو ہیں کہ اے اللہ، ان 4 میں سے ہماری 2 قبول فرما، کیونکہ ہم نے رسول اللہ کے پیچھے 2 پڑھیں، ابو بکر و عمر کے پیچھے 2 پڑھیں، اور عثمان بھی اب تک 2 پڑھاتے رہے، ابھی انہوں نے 4 پڑھائی ہیں۔ تو لہذا مسنون عمل جو ہے اسی کو ہی اختیار کیجیے، نمازیں قصر کیجیے۔ پہلے دن جمرہ عقبہ کی آپ نے رمی کی تھی، اس کا ٹائم آپ کو بتایا گیا طلوع آفتاب سے شروع ہو گیا تھا۔ 11 تاریخ کی رمی کا وقت جو ہے مسنون، وہ زوال کے بعد ہے۔ آج 24 گھنٹوں کے لیے انہوں نے کھول دیا ہے جمعرات کو، आपके पास सहूलत मुयसर है, इस सुन्नत पर अमल करें। उन्होंने जो 24 घंटे के लिए खोल दिया है जमारात की रमी को, वो एक मसलहत के पेश नजर उलमा से जवाज का फतवा लिया है कि जवाल के फौरन बाद जब जमारात का टाइम होता है तो पहले ये लोग जवाल तक रास्ते जमारात तक पहुंचने के बंद कर देते थे। लोग बड़ी तादाद में जमा होना शुरू होते, हत्ता के जवाल होते ही जब रास्ते खोले जाते तो लोगों को कंट्रोल करना इनके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाता और इस कदर लोग भगदड़ मचाते कि बास गिर कर दब जाते, मर जाते, जख्मी हो जाते थे। तो इन हालात के पेश नजर उन्होंने अहले इल्म से फतवा लिया है कि जानी नुकसानात होते हैं यहाँ, तो फतावा लेकर उन्होंने 24 घंटे के लिए खोल दिया ताकि वो भगदड़ की कैफियत ना हो। लेकिन मसनून अमल है, आप उसी को इख्तियार कीजिए। जवाल के बाद आप तीनों जमरात के लिए आज कंकरियां लेके जाएंगे, साथ साथ 21 कंकरियां मारनी है, इजाफी कुछ रख लें। तरीकाकार क्या है? पहले दिन 10 तारीख को तो सिर्फ जमरा अकबा की रमी थी, आज जमरा उला, जमरा दुनिया जिसको कहा जाता है, सुगरा भी कहा जाता है, सबसे पहले वो आएगा, आपने उसकी रमी करनी है। तरीकाकार वही है कि बाएं जानिब से होकर फिर उस जमरा की दीवार की तरफ रुख कर ले, और ये तरीका मैं आपको बता चुका। एक बार आप इस पे जब अमल कर लेंगे इंशाल्लाह आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि शुरू में आपने रमी नहीं करनी बल्कि आगे चलते रहना है। लोग वहीं कूद जाएंगे, आप आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ये काफी लंबी चौड़ी दीवार है, आगे जाकर फिर दीवार की तरफ उसके आखिरी कोने से पहले पलट जाएंगे तो आपको कोई रश नहीं मिलेगा, बड़े इत्मीनान से रमी करने का मौका मुयसर होगा। एक एक कंकरी एक मोटे चने के बराबर या इससे थोड़ी कमोबेश, अल्लाह अकबर कहकर 7 कंकरियां मारिए, वहां से थोड़ा आगे बढ़े, रश खत्म हो जाए, उल्टी साइड पे चले जाए दीवार की तरफ, नबी अली सलात वसलाम की सुन्नत मुबारक है। थोड़ा आगे चलकर जब थोड़ी सहूलत मुयस्सर होती, आप किबला रुख होकर एक लंबी दुआ मांगते हाथ उठाकर, आप भी किबला रुख हो जाइए, हाथ उठा के खूब एक दुआ मांगिए। दुआ से फारिग होकर जमराए वुस्ता दूसरे जमरा की तरफ बढ़ जाइए, इसी तरीके से रमी करके उसके बाद भी फिर जब सहूलत मिले रश थोड़ा टूटता है, उल्टे हाथ की तरफ दीवार की तरफ जाके फिर किबला रुख होकर एक लंबी दुआ मांगना हाथ उठा के, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इस पे अमल कीजिए। फिर आगे बढ़ जाइए, फिर वही जमरा अकबा है जिसको आपने पहले दिन 10 तारीख को रमी की थी और दुआ नहीं मांगी थी, आज भी उसकी रमी उसी तरीके से करें, 7 कंकरियां मारकर आगे बढ़ जाए, उसके बाद दुआ नहीं, वापस मीना पलट आइए, अपने खेमे की तरफ आ जाइए। आज का जो एक मखसूस अमल था हज के हवाले से वो आपका अदा हो चुका बेहमदिल्ला। अगली रात भी आपने मीना में गुजारनी है। फिर जवाल के बाद तीनों जमरात को इसी तरीके से जिस तरह आज आपने रमी की है उनकी फिर रमी करनी है। पहले के बाद दुआ, दूसरे के बाद दुआ, तीसरे के बाद दुआ नहीं। ये 12 तारीख है, इसी के बारे में कुरान कह रहा है, फमन तअज्जला फी यौमैन फला इस्मा अलैह। 12 तारीख की रमी करके कोई आना चाहे गुरूब आफ्ताब से पहले पहले मीना से चला जाए, ना उस पर मबीत वाजिब, रात गुजारना वाजिब, ना अगले दिन की रमी वाजिब। रात हो गई, तो रात गुजारना भी उस पर वहां वाजिब, अगले दिन की रमी भी उस पर वाजिब हो जाएगी। रात हो जाना दो तरह से है, अपनी गफलत की वजह से, अपनी ताखीर की वजह से गुरूब हो गया, अब रात गुजारे। एक ये है कि आप अपना सामान बांध के रवाना हो गए, रश और भीड़ की वजह से आपकी गाड़ी ना निकल सकी मीना की हदूद से, या आप चलते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा रश की वजह से गुरूब हो गया आपको मीना की हदूद से, आप ना निकल सके, तो ये आपका जो है गुरूब, ये आपको मबीत वाजिब नहीं करेगा मीना पर, अब चले जाए, क्योंकि आप इससे पहले ही गुरूब से पहले पहले रवाना हो गए। लेकिन अगर आप गुरूब तक आपने रवानगी ही इख्तियार नहीं की, तो फिर मबीत भी वाजिब, अगले दिन की जवाल के बाद रमी भी वाजिब, और वो रमी भी ब्याय नहीं उसी तरीके से है, जवाल के बाद, पहले के बाद दुआ, दूसरे के बाद दुआ, तीसरे के बाद वापसी, और वापसी अपने होटल में जाना है। अब वाजिबात हज में से सिर्फ एक वाजिब बाकी है, और वो है तवाफ अलवदा। तवाफ कुदूम वो था जो आपने जाते ही किया था, तवाफ इफाजा या जियारत वो जो 10 तारीख को आपने किया, और वापसी रवानगी के वक्त आपने जो तवाफ करना है वो तवाफ अलवदा है। ये वाजिबात हज में से है, रह जाने की शक्ल में दम लाजिम आता है। ये सिर्फ और सिर्फ उन खवातीन के लिए माफ है जो अय्याम मखसूसा में हो, वो इसको छोड़ के जा सकती है। तवाफ अलवदा को जितना मुअख्खर करना मुयस्सर है उतना मुअख्खर करें, क्योंकि आज रश के पेश नजर ये थोड़ा नामुमकिन हो जाता है कि हम तवाफ करें और उसी वक्त सवारी पर बैठ के रवाना हो जाए, क्योंकि सवारियों की ताखीर, थोड़ा अगली नमाज का टाइम हो जाता है, वो नमाज पढ़ी जा सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले, 2 दिन पहले ही रवानगी से आप तवाफ अलविदा कर लें, ऐसा नहीं करना। आखिरी मरहले में नबी अली सलात वसलाम ने जैसे 13 तारीख को फरागत इख्तियार की, तो वादी मुहस्सब में पड़ाव डाला, वहां से रात को आप अली सलाम साहबा को लेकर गए, तवाफ अलविदा करके आए, और फिर यहां मुहस्सब में सुबह की नमाज पढ़कर यहां से ही मदीना को रवाना हो गए थे। तो अब काफिले में आप इस वक्त जितने भी सामेईन हैं, सुनने वाले सुनने वालियां, इनमें से किसी का मदीना पहले होगा, मदीना से होके आ चुके हैं, उनकी रवानगी यहां से अपने अपने ममालिक की तरफ होगी, और बास का कयाम पहले मक्का में हुआ होगा, तो फारे होकर अब उन्हें मदीना की तरफ जाना होगा। तो बहरहाल वो मदीना की तरफ जाना हो या अपने मुल्क की तरफ, कोशिश ये करनी है कि तवाफ अलवदा को जितना लेट कर सकते हैं उतना ही लेट किया जाए। ये हज का आखिरी अमल है, आखिरी वाजिब है, जो तवाफ अलवदा के अदायगी के साथ साथ अल्लाह की तौफीक से आपका हज मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह ताला हज मबरूर की तौफीक अता फरमाए, तमाम मनासिक, तमाम अहकाम शरीयत के मुताबिक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, कदम कदम पे अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमाए, कहीं भी सफरी मुशक्कतों और तकालीफ से अल्लाह ताला वास्ता ना कराए, बल्कि महफूज फरमाए। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियां करे, खैर के साथ ले जाए। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, इंशाल्लाह अगली हमारी नशस्त में, अभी आपको कुछ सवालात का टाइम दिया जाता है, अगली हमारी नशस्त जो आखिरी नशस्त होगी, हज का अमल यहाँ हमारा मुकम्मल हो गया, अब हम कुछ मुख्तसर उस अपने इस नशस्त में मदीना के हवाले से चंद गुजारशात वहाँ के कुछ आदाब, वहाँ की कुछ ज़ियारात, उस हवाले से आपके सामने अपनी मालूमात इंशाल्लाह रखेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब की इस काविश को सुनने को, सुनाने को, समझने समझाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
जजाकल्लाह खैरन कसीरा शेख साहब, आपने माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से सब समझाया है कि मेरा ख्याल में कोई भी सवालात ऐसे नहीं रह गए। मगर ये एक बहन ने सवाल किया है कि अगर तवाफ इफादा हम दूसरे दिन करें या तीसरे दिन रश की बिना पर, तो क्या कब तक हम कर सकते हैं फिर?
तवाफ इफाजा दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, बल्कि शरीयत में उसकी कोई हद मुकरर नहीं है। कुछ मसालिक में यह रखा गया है कि अय्याम तशरीक में जो आखिरी दिन है 13 तारीख, उसकी मगरिब से पहले पहले कम से कम हमारे तवाफ के 4 चक्कर हो जाए, लेकिन हदीस में हमें कोई ऐसी पाबंदी नजर नहीं आती। इसके बाद भी अगर मुअख्खर करना पड़े तो किया जा सकता है। अलबत्ता अफजल तरीन जो है वो पहला दिन ही है। देखिए, नबी अली सलातो सलाम को जब रवानगी से पहले 13 तारीख को अपने खैमे में पता चला, सईदा सफिया उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह अनहा शरी इस आरजे में पीरियड में हैं, तो आपने फरमाया कि सफिया अब तू हमें रोकेगी, हमें रुकना पड़ेगा। आप ये समझ रहे थे कि शायद इसने तवाफ इफाजा अब तक नहीं किया, जबकि उन्होंने तवाफ अलवदा नहीं किया था। तो आप ये समझ रहे थे कि तवाफ इफाजा अब तक नहीं किया, इसी में ये नुक्ता मौजूद है। चूंकि उसे लेट करना जायज था, जब भी तो आपने ये नहीं फरमाया पहले क्यों नहीं किया, कहा आप तो रुकना पड़ेगा। फिर जब तफसील मालूम की कि आपने कौन सा तवाफ करना है, क्यों परेशान हो रही है, कहा मुझे तवाफ अलवदा करना है, तवाफ ज्यारत तो मैंने पहले कर लिया था। तो फिर नबी अली सलाम ने फरमाया इदन तन, फिर कोई मसला नहीं है, इस तवाफ को छोड़कर आप जा सकती हैं। तो लिहाजा तवाफ इफाजा ताखीर से रश की वजह से अदा किया जा सकता है, अगले दिन भी, उससे अगले दिन भी, उससे अगले, और अगर तीसरे चौथे दिन भी सहूलत मयसर ना हो तो मजीद लेट भी किया जा सकता है। लेकिन ये याद रखिए, तहल्लुले सानी मुकम्मल तौर पर एहराम की जो पाबंदियां खत्म होती हैं वो तवाफ इफाजा के बाद खत्म होती हैं। तहल्लुले अव्वल मैंने जिस तरह आपके सामने रखा कि जब हल्क और कसर हो गया, बाल कटवाए, एहराम खत्म, ये तहल्लुले अव्वल है। सारी चीजें जो एहराम की वजह से हराम थी वो हलाल हो गई। एक मसला इस दीवाजी ताल्लुकात वाला, वो तवाफ इफाजा के बाद ही जाके हलाल होता है, उसको तहल्लुले सानी कहते हैं। जी
ठीक साहब, ये एक और बहन का सवाल है कि अगर ऐसा हो गया कि हैज के दिन आ गए हैं और पैकेज भी खत्म हो रहा है और वो कह रही है कि हम अभी तवाफ इफादा नहीं कर पाए, तो इसका क्या हल आप बयान फरमाएंगे?
देखिए, पहले तो आप अपनी तरफ से मुकम्मल जो असबाब हैं तैयारी के, मैंने जिस तरह अर्ज किया, वो कोशिश करें। इसके बाद जो शरी हल है वो यही है कि नबी अली सलाम ने जिस तरह सईदा सफिया से, उम्मुल मोमिनीन से फरमाया था कि अब तू हमें रोकेगी, हमारी तो तैयारी थी कि आज रात को निकल जाएं, लेकिन तेरी वजह से अब हमें रुकना पड़ेगा ताकि तू अय्याम से पाक हो और तवाफ इफाजा करे और फिर जाए। ये शरी हल है। अगर मुमकिन है कि अपनी एयरलाइन की सीटें, टिकट्स वगैरह आगे, मुमकिन तो होता है, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन मुमकिनात होता है, कई एक साथियों ने किया है, इजाफी कुछ चार्जेस भी लग जाते हैं, लेकिन वो अपनी फ्लाइट्स को मौखर करा लेते हैं। तो ये 100% तसल्ली, तशफी और असल शरी हल इसका यही है। कोई और शक्ल नहीं बन सक रही, और वो इतना दूर किसी मुल्क में है कि वापस आ भी नहीं सकते, कि उसी मुल्क में सऊदीया में हूँ, तो चलो ठीक है कि अभी चले जाएं और फिर वापस आकर तवाफ इफाजा करके वो लोग जा सकते हैं। लेकिन अमेरिका से आए, कनाडा से आए, पाकिस्तान से गए, फिर जाना ये आम मामूली बात तो नहीं है। तो फिर कुछ इस इन मजबूरियों के तहत इज्तिहाद इस्तदलाल किया है, कोई नस नहीं है, कोई हदीस वाजे नहीं है, हदीस वही है। इस वक्त जो सऊदीया के बड़े बड़े उलमा हैं, इमाम इबन तैमिया रहमहुल्ला, अल्लामा इबन कईम रहमहुल्ला के फतावा को सामने रखते हुए कि उन्होंने ये रुख्सत दी है कि जब कोई और हल ना हो, तवाफ इफादा नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि इसके बगैर हज नहीं है, फिर वो इंतहाई मजबूरी के पेश नज़र कराहत के साथ अपने आप को मुस्तहाजा, जो खातून ब्लीडिंग के मर्ज में मुबतला होती है, अयाम नहीं होते, ब्लीडिंग के मर्ज में मुबतला होती है, उसके लिए चूंकि रुख्सत है कि वो जाए तवाफ कर ले, उसी पर कयास करते हुए ये भी जल्दी जल्दी अपना तवाफ जाके करे। सफा मरवा की सई तो वैसे भी की जा सकती है, उसके लिए तो कोई पाबंदी नहीं। तो इस तरह ये करके ही रवाना हो और अल्लाह से इस्तगफार करे, सदका भी कर दे कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह में ये कबूल फरमा ले। बस ये एक मजबूरी में हल इस वक्त वहाँ के बड़े उलमा ने हमारे सामने रखा है, नहीं तो जो शरी और असल हल है वो यही है कि अपने प्रोग्राम को मुअख्खर किया जाए वापसी वाले को, और ये रुकन हज का अदा किए बगैर ना जाया जाए।
एक साहब, एक और सवाल इसी से मुतल्लिक आया है कि अगर गोलियां खाने के बावजूद अपने अय्याम से पहले ही गोलियों की वजह से बाज दफा ऐसा हो जाता है कि तारीखें आगे पीछे या मौसम या इसकी वजह से, या अक्सर तो गोलियां खाने की वजह से कुछ साइकिल आगे पीछे हो जाता है, तो उसको इस्तेहाजा में शुमार किया जाए या उसको हैज ही समझा जाए?
नहीं, वो तो पीरियड ही समझा जाएगा क्योंकि वो पीरियड ही, जिस तरह आप फरमा रही हैं कि दवाइयों की वजह से शेड्यूल आगे पीछे हुआ है, तो उसको इस्तेहाज़ा नहीं समझा जाएगा, उसको यही अपना जो रूटीन का पीरियड है उसी में ही काउंट किया जाएगा। तो वैसे वक्त से पहले ही डॉक्टर के किसी मशवरे से ये मामलात किए जाएँ तो हर साल जाने वाले ग्रुप्स तसल्ली और तशफ़ी उनको होती है और बताते हैं कि वाकई हमने ये सिलसिला डॉक्टर के मशवरे से जाने से काफ़ी पहले ही शुरू कर दिया था, तो आसानी रही बिहम्दुलिल्लाह ताला। वो इसके कुछ मुसमरात, कुछ नुकसान मजरात वगैरह भी बताए जाते हैं, लेकिन एक मजबूरी है ऐसी, तो बहरहाल वो दिन ही शुमार किए जाएंगे। सवाल का मकसद यही है।
और शेख साहब, एक और सवाल आया कि अगर कोई काफी दिन पहले से, मसलन हज के दिनों से भी पहले, थोड़ा यानी 4-5 दिन पहले से वो जद्दा में अपने रिश्तेदारों के पास चले गए और वो वहां से कह रहे हैं कि हम मीकात गुजर के गए थे, तो क्या हम वहां से एहराम पहनेंगे या हम हफ्ता उनके घर रहे और उसके बाद जो उनकी मुकीम की जैसे मीकात आती है तो हम वहां से फिर एहराम बांधें?
आप अपने मुल्क से जब रवाना हुए हज के इरादे से रवाना हुए, और हदीस में है लिमन अराद अल हज वल उमरा, जो हज और उमरे के इरादे से इन मवाकिद से गुजरे वो बगैर एहराम के ना जाए। एक शख्स बगैर हज और उमरे के इरादे से गया है तो वो बगैर एहराम के जा सकता है, उनसे मुलाकात के लिए गया है, किसी कारोबार के लिए गया है, किसी काम के लिए गया है, फिर फारिग होकर वहां से इरादा बना के उमरा कर लें या हज कर लें तो वो वहां से एहराम बांधे। लेकिन जो गया ही हज के लिए है या उमरे के लिए है, भले वो 10 दिन भी अपने रिश्तेदारों के पास रहे, वो एहराम ही में रहेगा, क्योंकि मीकात को बगैर एहराम के को अबूर करना, उस पे जो है दम लाजिम आ जाएगा।
जी शेख साहब, ये कुछ दिन पहले बहन ने सवाल किया था कि वो हज तमत्तो कर रही हैं और वो जो पहला उमरा कर लेंगी हज का, उसके बाद जितने दिन वो मक्का में मुकीम है तो वहां पे क्या ये और भी कुछ उमरा कर सकती हैं, नफली उमरा?
जी बिल्कुल, क्योंकि उमरा करके जो हज का है उन्होंने एहराम खोल दिया है, अब दरमियान में जो वक्फा है इसमें मीकात से बाहर जाना फिर वापस आना, इनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। ये हज करान वाले और इफराद वाले के लिए है कि चूंकि उन्होंने एहराम बांधा और एहराम ही में अब रहना है, तो लिहाजा वो दरमियान में कोई और उमरा नहीं कर सकते। लेकिन मुतमत्ते जिन्होंने हज तमत्तो किया है एहराम खोलने के बाद, वो दरमियान में नफली उमरे कर सकते हैं।
शेख साहब, ये उन्हीं बहन ने पूछा है कि जो अगर जो सूरत हाल बयान की गई है कि इस तरह का अगर हो जाता है, और आपने जैसे फरमाया कि वो फिर भी एक मजबूरी की हालत में वो तवाफ इफादा कर ले है इसकी हालत में, तो उसके बाद वो कह रही है कि वो नफल तो नहीं पड़ेंगी ना फिर तवाफ
जी
की।
नफल नमाज अदा नहीं होगी, नमाज नहीं होगी।
और एक और बहन कहती है कि जैसे जो औरतें जिनके हैज खत्म हो चुके हैं, लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि वहां के मौसम के हालात और वहां की गर्मी की शिद्दत और उसकी वजह से बाज दफा कोई एक आध दाग लग जाता है, तो वो इसको क्या है समझेंगी या नहीं?
बस उसी दाग के शक्ल सूरत को देखकर वो अंदाज़ा खुद लगाएं और फिर उसी वक्त ही गुसल कर लें, क्योंकि वो महज एक दाग ही था, गुसल कर लें ताकि तशफी शक और शुबा भी बाकी ना रहे। लेकिन ऐसे मामलात में यही होता है कि कुछ पढ़ी लिखी खवातीन जो है वो खुद फैसला करें कि इससे कबल भी बसा अवकात दाग लगते थे, आया ये उन्हीं में से है, तो फिर वो उसी को शुमार करते हैं। तो उसका हल बेहतरीन यही है कि उसी वक्त ही फौरन फिर गुस्ल कर लिया जाए और फिर दोबारा से अपने अमल को जारी रखा जाए, क्योंकि अय्याम में सिर्फ तवाफ ही की तो ममानियत है ना, बाकी सारे मनासिक अदा किए जा सकते हैं, लिहाजा उनके लिए और कोई परेशानी नहीं है।
ये शेख साहब भाई ने सवाल किया कि एक दिन में वो कितने नफली उम्रे कर सकते हैं?
कसरत के साथ वहां रहते हुए उम्रे करने की कोई फजीलत नहीं है, कसरत के साथ वहां रहते हुए तवाफ करें तो ये औला है, बाकी हदबंदी नहीं है। अहले इल्म का ये फतवा है कि कम से कम इतना वक्फा तो एक उम्रे के बाद दूसरे उम्रे को दें कि कुछ बाल तो जाहिर हो जाएं आपके, कि फिर दोबारा हलक करा सके। सहाबा कराम अहद नबी में, बाद में अहद सिद्दीकी है, फारूकी दौर है, उस्मान वाली के अदवार है, इन सारे अदवार में हज के लिए आते, उम्रे के लिए आते, तो ये बकसरत वहां रहते हुए उम्रे करना उनके अमल से भी साबित नहीं होता। लिहाजा वहां बेहतर यही है कि कसरत के साथ तवाफ किए जाए। ठीक है, एक दो कुछ वक्फे के साथ वो उम्रे करना चाहते हैं, मिकात से बाहर जाके उम्रा कर लें, लेकिन एक दिन में कई कई उम्रे अपने आप को तकलीफ में डालने के मुतरादिफ भी है, और फिर ये कि इसकी कोई फजीलत भी अलहदा से नहीं आई।
जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा शेख साहब, आपके साथ जो अगली नशिस्त होगी मैं सबसे दरख्वास्त करूंगी कि इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, आप लोग एक दो तीन दफा इसको सुनिए, और फिर भी कोई और भी सवालात आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम शेख साहब से दरख्वास्त करेंगे कि हमें अगली नशिस्त में उनके जवाब बात दी दे। तो अभी तक आज के लिए हम यहीं पे मुकम्मल करते हैं इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा शेख साहब, आपके वक्त का
ठीक,
ताला को,
बारक अल्लाह। जी,
और आप भी
जजाकुमुल्लाह,
हमें दुआओं में याद
बारकुल्ला,
रखिए कि हमारा हज अल्लाह ताला मबरूर बना दे।
इंशाल्लाह मेरी भी दुआएं, और आप तमाम से मेरी भी दरख्वास्त कि मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए, खसूसी तौर पर आप लोगों ने उनकी बख्शिश के लिए, हमारी भी बख्शिश के लिए, और ये कि अल्लाह ताला ये बार बार हम सबको मौके नसीब फरमाता रहे, ज़रूर दुआएं करनी है। जजाकुमुल्लाह, शुक्रन, बारक अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।